सांप और सांप भी पानी में जाता है और मछली पानी में पानी से बाहर आता है, बल्कि उसको आना पड़ता है, आकर शिकायत करता है ताकि जो उसकी रगों पानी में रहती है, क्योंकि पानी में रहना उसकी हयात है और उसकी जिंदगी। पानी से निकलेगी एक लम्हे को, एक सेकंड को जिंदा न रहेगी। ज्यादा पानी से जब निकलती है तो तड़पती है, तड़पकर वापस लौट जाती है। ये अलामत है उसकी मछली होने की। और जो मछली है इस बात पर चलो कोई बात नहीं, अब आए जरा पानी से निकाला, क्या करता है फिर वो, ऐसा मतलब है कि वो मछली नहीं है, क्योंकि पानी के बगैर एक लम्हा रह नहीं सकती। तो मछली बगैर पानी के रहने पर राजी हो जाए तो इसका मतलब है कि वो मछली वालों से ताल्लुक करते हैं, अल्लाह वालों के भेष में, अल्लाह ताला की नाफरमानी पर राजी हो जाए कि मछली को निकाल तो लेंगे, लागत कभी ऐसा हो सकता है कि नफ्स और शैतान के छिकाने से बाहर निकल आए, ऐसा मुमकिन हो सकता है। उस पर राजी रहना कि चलो अब आए गए हैं तो चलो और एक दो और रफीनों को देख लो, एक दो गुना और कर लो, मतलब ये हुआ कि अभी हम अल्लाह वाले, अभी हमें अल्लाह वाला बनने में कमी है हमारे, लाजमी है उसकी, लाजिम और मलजूम है, हर आदमी को अपने साथ लेकर जाती है, बल्कि मछली पानी का इंतजाम करना पड़ता है। अल्लाह का आशिक है, उसको फिक्र होनी चाहिए कि अल्लाह की याद का पानी पहले से मर, इसलिए पूछ लेते हैं रास आ जाए और जो गुनाह पर राजी हो जाए तो इसका मतलब अभी वो मछली नहीं है। तौबा करने में देर करें, हमको गुनाह रास आ गया हो जाना, इसको ये ताज्जुब है। अली जनाब, और अल्लाह की नाफरमानी पर राजी रहना, ये बहुत ताज्जुब की बात है। क्या मतलब ये है कि ये इस गुनाह पसंदी की आदत है इसकी, इसलिए हजरत ने फरमाया कि भंगी पाड़े से दो आदमी आए और उन्होंने कहा कि जी हमारा मिजाज भंगियों वाला है, हम भंगी हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि गुलशन में आए, बाग में आए। बागबान ने गुलशन से आकर ये दरख्वास्त की कि हम चाहते हैं कि हमारा भंगियाना मिजाज मुआत्ताराना मिजाज से तब्दील हो जाए। क्या तरीका होगा? क्या उसका तरीका ये होगा कि तुम आके रहो भाई, यहां पर तुम आके रहो, छह महीना रह जाओ तो तुम्हारा भंगियाना मिजाज मुअत्तराना मिजाज से तब्दील हो जाएगा। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, अब दोनों रहेगा। बागवान ने कहा कि शर्त यह है कि पखाने की डिबिया रखने की इजाजत होगी, इनमें रहो पखाने की डिबिया ना रखना। उन्होंने कहा एक आदमी ने अभी दोनों रहे आकर और एक ने बिल्कुल बात मानी, पखाने की डिबिया ना रखी, बाग में रहा, चमन में रहा और इसी तरह तकलीफ तो हुई क्योंकि पखाना सूखने की पुरानी आदत, तकलीफ तो हुई लेकिन उसने कहा बात माननी है बागबान की ताकि मिजाज बदल जाए। दूसरे ने क्या करता था, दूसरा जो है वो उसने रखी डिबिया, कभी कभी उसको जरा सूंघ लेता था कि पुराना मजा एकदम से कैसे छोड़ दें। महीने गुजर गए, उन्होंने पूछा कि अब कैसे पता चलेगा कि हमारा मिजाज बदल गया, लूम चले। तो बागबान ने कहा, बागबान ने गुलशन ने जाओ भंगी पाड़े जाओ। तो अब दोनों आदमी भंगी पाड़े गए, तो वो आदमी जिसने पखाने की डिब्बी अपने साथ नहीं रखी थी, अब वो वहां गया तो बदबू से उसके सर में दर्द शुरू हो गया और बेहोश हो गया। वो उसको उठाकर लाए और जो दूसरा आदमी था उसके लिए सब कुछ नॉर्मल रहा और मिसले कारमल रहा। वो गुलशन में आए बागबान के पास, उसको बताया तो उसने कहा मुबारक हो तुमको जो बेहोश हुआ, मुबारक हो तुमको कि तुम्हारा मिजाज मुअत्तराना हो गया, तुम्हें बदबू रास नहीं आई। और उससे कहा जालिम तू सच बता, तू पखाने की डिबिया तो नहीं रखता था, तूने छुप छुप के जो है कोई हरकत की है कि तेरा मिजाज क्यों नहीं बदला। इससे एक बात पता चली कि अगर मुरीद ये कहे कि मुझे फायदा नहीं होता, ये शेख ठीक नहीं, वाकई शेख को फिर परखा जाएगा। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जिस शेख की सोबत से दूसरे, जिस बागबान की सोबत से दूसरे भंगी वो मुअत्तराना मिजाज उनका बदल रहा है, इसका नहीं बदल रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस इंस्टीट्यूट से डॉक्टर इंजीनियर्स निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेज से, ये नहीं बन रहा, तो कसूर इंस्टीट्यूट का नहीं है, इसका कसूर है। हाँ ये होता कि सारे भंगी होते, सबका मिजाज वही भंगियाना रहता, मुअत्तराना ना रहता, तो तब तो था कि ये शेख ठीक नहीं। इसलिए शेख काबिल की शराइत में से कि जिसकी सोहबतों में अक्सर लोग मुत्तबे शरीयत और मुत्तबे सुन्नत हो, दो चार गंदे अंडे निकले कोई नहीं। हकीम मोहम्मद थानवी ने तो यहां पे फरमाया 10 में से अगर 5-6 आदमी भी शरीयत और सुन्नत के मुताबिक है ना, ये शख्स शेख काबिल है। और 3-4, 4-5 अगर ऐसे निकले अंधे गंदे जो ऐसे के वैसे ही है, फिर उसमें भी एतबार है कि ये आदमी शेख के साथ रहा कितना है। अब एक आदमी आता ही नहीं है, ये कभी कभी आया, एक अक्सर रहने वाला, फर्क होता है उसका, बस अक्सर रहने वाले का एतबार है। और वो अक्सर रहने के भी क्या माने कि हजर में भी हो, सफर में भी हो, जलवत में भी हो, खलवत में भी हो, ये माने। क्योंकि बाजू ने सफर में तो सोबत उठाई, हजर में नहीं रहे, या बाजे हजर में रहते हैं सफर में नहीं जाते, बाजे जलवत में है तो खलवत में नहीं आते, बाजे खलवत में है वो जलवत में नहीं आते। यानी कैसे कि शेख की तनाई में खिदमत तो कर रहे हैं लेकिन मजलिसों में नहीं बैठते, ये भी कमी है। अजीब है ये कि खिदमत तो बहुत है कि हर काम के लिए हाजिर, लेकिन मजलिस में नहीं आते, इनमें कमी रहेगी। और जो हजर में है, हजर में तो रहते हैं सफर में नहीं जाते, इल्ला ये कि उनका उज़्र शरई है, कोई ऐसा कि सफर नहीं कर सकते, मान लो माल नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, माली उसकी कमजोरी है तो वो मजबूर है, लेकिन आह तो निकलेगी ना उसकी, आह तो निकलनी चाहिए उसकी, तो इंशाल्लाह उसको फैज मिल जाएगा। और बाजे सफर में तो खूब है कि चलो भाई सफर है वक्त निकाल के, लेकिन हजर में नहीं आते, ये भी कमी इनमें रहेगी। तो पता चला कमाल उसमें पैदा हो जाएगा, हजर सफर जलवत खलवत हर हाल में ताल्लुक रहे, उसके अंदर कमाल पैदा होगा। तो लिहाजा अब उसने उसको मुबारकबाद दी, उसके जालिम तो सूंघता था इसलिए देखी नहीं दिया। फरमाया उसी तरह से अल्लाह वालों से ताल्लुक के बाद कि फरमाए कि कैसे मिजाज पता चलेगा ऐसे कि अब उसको गुनाह रास में आए। बर बिनाए बशरियत कमजोरी की वजह से शैतान और नफ्स के गलबे की वजह से ये गुनाह कर बैठेगा, लेकिन उस पर राजी नहीं होगा, नदामत और दर्द भरे दिल से अल्लाह ताला से आहुजारी करेगा। ये अलामत है कि इसका मिजाज बदल गया, रास नहीं आ रहा। लज़्ज़त गुनाह की सोहबत का एक फायदा ये होता है कि गुनाह की वो लज्जत है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि एक नेक आदमी सोहबत में बैठा लो वो भी गुनाह कर सकता है, लेकिन लज्जत कामिला ना पा सकेगा क्योंकि उसका दिल डर रहा होगा ना, दिल कुछ और है वो। लिहाजा वो जो, क्योंकि जो गुनाहगार गुनाह करता है ना तो इन्हिमा फिल मासियत के साथ करता है, यानी गुनाह में डूब के गुनाह करता है। और और जब सोहबत में बैठने वाला जाकिर जब गुनाह करता है तो उसको डर भी लगा होता है कि अभी पकड़ा गया, अभी कुछ रुसवाई, अभी यह है, यह बहुत अच्छी अलामत है। लिहाजा उसको इन्हिमाक फिल्मासियत नहीं होता। लिहाजा इसलिए एक गाफिल इंसान में और एक जाकिर इंसान के गुनाह में बड़ा फर्क है, कैफियत का बड़ा फर्क है। वो डूब के गुनाह करता है जालिम, और इसको इन्हिमाक नहीं होता, ये डर भी होता है। बजाहिर एक जैसे लगते हैं दोनों, लेकिन बहुत फर्क है उसके बावजूद। इसलिए सोहबत में रहे तो फिर क्या फायदा, उसका फायदा ये होगा कि अब गुनाह रास नहीं आएंगे इसको। अब जिस कहा कि चलो यार, चलो दुबई चलेंगे यार, क्या सुना बड़ी रंगीनी आती है वहां पे, दुबई की रंगीनियां देखेंगे, थोड़ा सा सर झुका के ऐसे भी देख लेंगे, ऐसे डिजाइन काम लेंगे, ड्राइविंग भी कर रहे हैं, देखते देखते उधर भी नजर मार ही ली, तो अभी इसका मिजाज भंगी हो वाला है, जालिम का मिजाज भंगी हो वाला है, अभी ये नजरबाजी में मुबतला है, गोया कि अपने नफ्स को हराम गजा भी दे रहा है, कि ले भाई अब तू अपना काम कर। इसका मतलब है कि इस जालिम का मिजाज अभी बदला नहीं है, भंगी वाला मिजाज है, नियत खालिस नहीं है। इसलिए तो देखिए ना, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, वस्बिर नफ्सका, आप अपनी जान पर सब्र फरमाइए, मअल लदीन यदउन रब्बहुम बिलगदात वलअशी, और उन लोगों को अपनी माइयत से मुनव्वर फरमाइए,
और अपनी माहियत का फूल उनको दीजिए कि जो सुबह शाम हमको याद करते हैं। सहाबा को के लिए हुक्म हो रहा है कि आप सहाबा की अपनी जान पर सब्र का हुक्म दिया जा रहा है कि आप अपने, तो मेरे शेख फरमाते हैं कि सरवर आलम सल्लम का ना रसूलुल्लाह सल्लम फी बैत मिन अबियाती, अपने घरों में से किसी के घर में थे तो घर से निकले तशरीफ ले गए, क्योंकि मेरे हजरत ने अजीब फरमाया कि आप अपने जाकर अपने फूले मोहम्मदी, गुले मोहम्मदी की खुशबू उनको दीजिए, अपनी खुशबू में उनको बसाइए। और हजरत ने यहाँ पर एक बात और अजीब फरमाया कि देखो माल नजीन है दोन, हम आपको माइयत दे रहे हैं, हम आपको घरों में नहीं भेज रहे बल्कि उन लोग अल्लदीन यदऊन रब्बहुम, जो आपके रब को पुकार रहे हैं, अपने रब को पुकार रहे हैं सुबह शाम, हम आशिकों में भेज रहे हैं, गैरों में नहीं भेज रहे। कि ऐसा कैसे हुआ कि अल्लाह ताला अपने महबूब को गैरों में भेजते? नहीं, गैरों में नहीं भेज रहे, अपनों में भेज रहे। और भेजने का मकसद यही है कि चूंकि अब कयामत तक दीन उन्हीं से चलाना है, उन शागिर्दों से, तो आपकी खुशबू उनमें मुंतकिल करनी, इसलिए अपनी माइयत से मुनव्वर कीजिए उनको और अपनी माइयत की खुशबू से उनको, खुशबू में उनको बसाइए। हजरत ने फरमाया कि देखो आशिक की अलामत ये कि बिलगदात आशिक सुबह शाम याद करने वाला, वो जाकिर भी होता है। फरमाया जो जिक्र नहीं करता वो आशिक नहीं है, कि जी टाइम नहीं मिल रहा जिक्र का, वो आशिक नहीं है। जिसको जिक्र का वक्त ना मिले वो आशिक नहीं। और दूसरी सिफत क्या, युरीदूना वजह, कि उनके दिल में अल्लाह के सिवा कोई मुराद नहीं है, अल्लाह ताला उनके दिल में मुराद है, वो अल्लाह ताला के इरादा रखते हैं। इसी से जो कहते हैं जी हम फला शेख से के मुरीद हैं और हम फला पीर से बैत और मुरीद हैं, तो उसके माने यही है, उसके माने ये नहीं कि उसके मुरीद, बल्कि उसके जरिए से अल्लाह के मुरीद, ये माने हैं इसके। ये मजाजन नस्बत की जा रही है, जैसे माल, ये माल हमारा थोड़ी है, तो सब अल्लाह का है, लेकिन मजाजन नस्बत की, क्योंकि निजाम कैसे चलता। अब हर आदमी कहता, जैसे वो एक आदमी था, हजरत ने सुनाया कि दरख्त पर चढ़ गया, फल खा रहा था, बाग का मालिक ने कहा क्या फल खा? उन्होंने कहा भाई आसमान अल्लाह का, जमीन अल्लाह की, दरख्त अल्लाह का, फल अल्लाह का, तू कहां से मना करता है? उसने कहा बहुत अच्छा, खामोश हो गया, जाके गया डंडा उठा कर लाया और डंडे से खुद ठुकाई और कुटाई शुरू कर दी उसकी। अरे जालिम मारता क्यों है? मैं नहीं मार रहा, आसमान अल्लाह का, जमीन अल्लाह की, दरख्त अल्लाह का, फल अल्लाह का, डंडा भी अल्लाह का, तू अल्लाह का, मैं अल्लाह का, ऐसा कोई इलाज सही नहीं है। तो ये माल भी हमारा थोड़ी है, ये भी अल्लाह का, इसलिए। लेकिन ये जो कहते जी मेरा माल, उसका माल, फलां की गाड़ी, उसकी गाड़ी, ये मजाजन है निस्बत, और ये इंतजाम के लिए जरूरी है, वरना ये थोड़ी यार कोई एक दूसरे की माल मारता फिरेगा, ये मजाजन है हकीकतन अल्लाह की तरफ से। लदा मुरीद होना ये भी मजाजन है, लेकिन हकीकत में यानी इस शेख के जरिए से अल्लाह का मुरीद है। लदा जो आदमी, इसलिए तो पीर परस्ती नहीं है, अल्लाह का शुक्र है हमारे यहां ये चीज नहीं है, है ही नहीं, बल्कि अल्लाह के मोहब्बत और ताल्लुक से कह देते उसके जरिए से, इसलिए मजाजन निस्बत कर देते कि जी फला का मुरीद है, हकीकत में अल्लाह का मुरीद है, ये इसकी हकीकत है। लेकिन मुरीद की सिफत दो होनी चाहिए, नंबर एक आशिक और मुरीद की सिफत, वो क्या, नंबर एक की तो ये कि जाकिर हो, सुबह शाम जिक्र करने वाला, अल्लदीन यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वलअशी, और दूसरी सिफत क्या है उसकी, कि अल्लाह के सिवा उसके दिल में कोई मुराद ना हो, वो अल्लाह का मुरीद हो, ये दूसरी सिफत। तो फिर क्या होगा, जब ये दो बातें पैदा होगी तो सोहबत शेख से उसको फायदा होगा, क्योंकि हुक्म है ना वस्बिर नफ्सा का, कि अपनी जान पर जुल्म सब्र फरमाइए और इनको अपनी माइयत से मुनव्वर कीजिए, अपनी माइयत की खुशबू से इन में इनको बसाइए। तो दो सिफात थी उन आशिकों में जिन पर उनको, क्योंकि एक तो सुबह शाम याद करने वाले और दूसरी क्या सिफत कि वो अल्लाह के मुरीद, अल्लाह उनके दिल में मुराद है, अल्लाह के सिवा कोई मुराद नहीं है, वो अल्लाह का इरादा रखते हैं, ये उनकी दूसरी صفت اور یہ ان کا کمال. سبحان اللہ. پتہ چلا عاشق کون ہے؟ اللہ کا. جو دو ہو، ایک تو ذاکر ہو اور اللہ کے سوا اس کے دل میں کوئی مراد نہ ہو، وہ اللہ کا مرید ہو. مرید اصلی وہی ہے. مرید اصلی کون ہے؟ جو اللہ کو اپنے دل میں مراد رکھتا ہو، غیر اللہ کو نہ مراد رکھے. یہاں تک کہ شیخ کی صحبت میں بھی وہ اللہ کو پانے ہی کی نیت سے ہو. کہ بہت دنوں سے مرغی اور یہ جی پیر صاحب کی زبردست دعوت ہوگی، چلو ہم بھی ہو جائیں، کیسے مزے آئیں گے. اللہ کا ارادہ رکھتا، اللہ کے سوا کوئی دل میں مراد نہ ہو. تو پھر ان کی صحبت سے پھل. اس سے ایک بات اور پتہ چلی کہ شیخ کو، شیخ اور استاد، اس کو بھی وقت دینا ہوگا. عاشقین کو اگر وہ وقت نہیں دے گا تو مرید ناقص رہیں گے اس کے، کہ جی شیخ جی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. لہذا اس لیے جو لوگ تو شیخ وقت نہیں دیتا کہ جی ٹائم نہیں ہے، تو ان کے مریدین بھی ناقص رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ صاحب نسبت بھی ہوں. تعلق محلہ کہ زبردست نسبت بھی رکھتے ہوں، لیکن اگر مرید کو وقت نہیں دے گا تو مرید کو فائدہ نہیں ہوگا. ایسے حضرات ہیں ماشاءاللہ، ان کے علمی مقام، عملی مقام، روحانی مقام بہت اونچا ہے، لیکن وقت نہ دینے کی وجہ سے ان کے مرید میں کمالات نہیں، کمال نہیں، ناقص رہتے ہیں. جیسے باپ ہے، اب وزیر اعظم ہے یا پائلٹ ہے، اتنا بزی ہے فلائٹ کی، اس میں اپنے بیٹے کو وقت نہیں دیتا. اس کا بیٹا پائلٹ نہیں بن سکتا، وقت دینا پڑے. کسان کا بیٹا کسان اپنے بیٹے کو وقت دیتا ہے، وہ پڑھ لکھ جائے گا اور آگے بڑھ جائے گا. یہ بڑا فرق پڑتا ہے. اس لیے اولاد کی تربیت میں بھی وقت دینے کا اہتمام ہے. اولاد کا یہ علاج نہیں ہے کہ ان کو پیسہ دے دیا بس، اسے تربیت ہو، نگرانی ہو، کہاں جا رہا ہے، کدھر بیٹھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، نگرانی بھی ضروری ہے. تو شیخ وقت دے، اپنی جان پر صبر کرے، تکلیف اٹھائے، آرام سے بھی آرام ہوگا. اس لیے حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب فرمایا وسبر نفسک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت کی عجیب بات ہے، فرمایا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم آپ کو آرام سے بے آرام تو کر رہے ہیں، گھر سے بے گھر تو کر رہے ہیں، اور آرام سے بے آرام کو تو کر رہے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں آپ کو آپ کا آرام جا مل جائے گا، اور وہ ملا ہوا ہے. میرے شیخ نے فرمایا کہ حضرت پھول پوری رحمت اللہ نے اللہ تعالیٰ کا نام رکھا تھا، اے قرارے جانے بے قرارا، اے بے قرار جانوں کے قرار، یہ اللہ کا نام رکھا ہوتا ہے. اے قرارے جانے بے قرارا، یہ جن کی جان آپ کے لیے بے قرار ہے آپ ان کا آرام ہے، قرار ہے. اے قرارے جانے بے قرارا، قرارے جانے بے قرارا، یہ اللہ کا تعالیٰ کا نام رکھا ہوتا حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے. کیسا جی بے نام، اے قرارے. اس سے اندازہ کرے کہ حضرت کا کیا تڑپ اللہ کی محبت کی جی حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، نام کیسا رکھا ہے. سبحان اللہ. اے قرارے جانے بے قرارا، اردو سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی جو جانے بے قرارا، وہ بے قرار جان جو اللہ کے لیے تڑپ رہی ہے، بے چین ہے، اس جان کا قرار آرام ہے. سبحان اللہ. اے قرارے جانے بے قرارا، یہ فرمایا کہ حضرت اللہ تعالی سے ایسی باتیں فرماتے تھے، ایسے باتیں عرض کرتے تھے، اے قرارے جانے بے قرارا. لہذا شیخ کے لیے کہ وہ وقت دے، لہذا جو شیخ وقت نہیں دے گا اسے فائدہ نہیں ہوگا. اس سے پتہ یہ چلا کہ شیخ تو وقت دے تو مرید بھی وقت دے، تو دونوں طرف سے ایک بات چلے گی، بات بنے گی. کیونکہ اگر شیخ نے وقت نہیں دیا مرید کو فائدہ نہیں ہوگا، مرید نے وقت نہیں دیا شیخ کو فائدہ نہیں ہوگا، شیخ سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. تو دونوں طرف سے یہ ہے ٹو سائیڈڈ لو افیئر، ون سائیڈڈ لو افیئر نہیں کہ یہ ایک طرف گاڑی چل رہی ہے اور ہائے کیا ہوتا ہے عشق میں، آئے یار رات میں نیند نہیں آ رہی. جیسے ہمارے کراچی میں ہے نا، ایک کراچی کے ایک نے، کراچی میں رہنے والے نے دوسرے سے، اپنے دوست سے کہا، یار رات پر نیند نہیں آتی، بستر پر کروٹیں بدلتا ہوں، بے چینی ہوتی ہے، کیا اسی کا نام پیار ہے؟ اس نے کہا گھبراؤ نہیں، بجلی نہ ہونے کی وجہ سے سارے کراچی والوں کا یہی حال ہے، گھبراؤ مت، سب کا یہی حال ہے. تو तो ये वन साइड लव अफेयर नहीं है, ये देखो ना, किसी फिल्मी अदाकारा या किसी को देखा बस उसके इसमें उतना ख्याल आता है, हाय हाय हाय, उसको खबर ही नहीं। इसलिए हजरत कवाला का अजीब से फरमाया, सिला इश्के मजाजी का ये कैसा है अरे तौबा, सिला इश्के मजाजी का ये कैसा है अरे तौबा, कि आशिक रोते रहते हैं और सनम खुश होता रहता है, कैसा जीना है कि उसको रो रहे हैं उसको खबर ही नहीं है। फरमाया क्या, और अल्लाह एक आशिक लैला है कि वो लैला के आशिक है उसको खबर नहीं है, एक आशिक मौला है तन्हाइयों के अंदर सारा आलम उसको नहीं देख रहा, वो अल्लाह की मोहब्बत में आंसू बहा रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है, आंखें भराई, इसको क्यामत के दिन अर्श का साया मिलेगा। रजुलुन जकर अल्लाह खालियन फफाजत आईनाहू, अल्लाह की मोहब्बत में याद करके या खौफ से उसकी आंखों में आंखें भराई, उसको क्यामत के दिन अर्श का साया मिलेगा। अल्लाह मुहद्दिसी ने यहां तक फरमाया कि खालियन की शरह इस तरह भी की, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, फरमाया एक तो खालियन से एक मुरादी के बिल्कुल कोई ना हो, और दूसरी मुराद ये ली कि ये मानवी मुराद ये ली कि उसके दिल में अल्लाह के सिवा कोई मुराद ना हो, कि मखलूक है लेकिन परवाह नहीं है उसको, दिल गैरुल्लाह से खाली है, इसको मैं ये भी शामिल करती हूँ। ऐसे अल्लाह वाले रोते हैं, मखलूक में भी रोते हैं, लेकिन उनके दिल में कोई मुराद नहीं, इसलिए नहीं रोते। बल्कि बुजुर्गों ने फरमाया कि शेख को रोना चाहिए, रोने वाला शेख होना चाहिए, क्योंकि जो शेख रोएगा नहीं उसके उन मुरीदों के दिल में अल्लाह की मोहब्बत की खेती पकेगी नहीं, पानी नहीं देता ना वो, जालिम खेती को पानी क्यों नहीं देता, रोने वाला शेख होना चाहिए ताकि उनके कल्ब के दिल में और उनके कल्ब की खेती वो पके, पानी जरूरी है कि नहीं, इसलिए रोने वाला होना चाहिए। तो आशिक की इनकी दो अलामत है, एक तो क्या कि वो जाकिर हो या सुबह शाम याद करने वाले हों, और दूसरी अलामत क्या कि उनके दिल में अल्लाह के सिवा कोई मुराद है, जाकिर इनकी दूसरी अलामत है। ऐसे है, और फिर आगे फरमाया वला तअदु अइनाका अनहुम, अपनी निगाहों को इनकी तरफ से फेरिए मत। तो पता ये चला कि निगाहे नबूवत का हुक्म हो रहा है कि निगाह नबूवत को इन पर डालिए, क्योंकि निगाह नबूवत से सहाबा साजी होती है, निगाह नबूवत साहबा साजी फरमाती है, और हजरत ने फरमाया निगाह विलायत विलायत साजी फरमाती है, सूरज की शुआओं से खेती गल्ला उगता है, ये अल्लाह वालों की ये आफ्ताब मानवी हैं, मिसल सूरज के हैं, इनकी सोहबतों से इनकी निगाहों से दिल में अल्लाह की मोहब्बत का गल्ला पकता है, अच्छे अखलाक के फल और फूल पैदा होते हैं। आशिक की दो अलामत कि एक तो जाकिर हो सुबह शाम याद करने वाला, और दूसरा अल्लाह के सिवा कोई मुराद ना हो। जब यह सिफत होगी, पहले हुक्म दिया कि आप अपनी जान पर सब्र कीजिए, अगर घर से बेघर होना होगा, और दूसरा वो किन के पास, आशिक के पास बैठे, जब वो आशिक बनेंगे अब शेख की निगाह उस पर काम करेगी, निगाह शेख से बोलते तूने मुझको क्या से क्या शौके फिरावा कर दिया, पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना कर, फिर वो ये कहेगा। अल्लाह ताला हमारी जानों को अपना कुर्ब अता फरमाए, लिहाजा ये गुनाह रास ना आना ये बड़ी नेमत है, अजूब नहीं कोई गुनाह का होना, लेकिन रास ना आए, राजी ना रहे गुनाह पर। करीम या करीम, चलो जिक्र कर लेते थोड़ा, हदीस पाक माता जो शख रोजाना एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह की पढ़ेगा उसका चेहरा क़यामत के दिन चौदहवीं रात के चांद की तरह चमकेगा। जब फरमाए इस हदीस शरीफ की बरकत से अल्लाह ताला जिसके लिए मुंह चमकाने का फैसला फरमाएंगे उसको मुंह चमकाने वाले अमाल की तौफीक अता फरमा दें, और मुंह काले करने वाले अमाल यानी गुनाहों से बचने की तौफीक दें। चलिए जनाब ले आओ जाके, दरवाजा लॉक न लगाना, वैसे जाओ जल्दी से ले आओ। बस हजरत ने फरमाया कि एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह की पढ़े, और कैसे पढ़े कि ये भी ध्यान करें कि जब लाग लाहक है कि नहीं है कोई माबूद, नहीं है कोई महबूब, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, तथा उसमें गैरुल्लाह की नफी करे। इसलिए जिक्र का नाम नफी इस बात भी है, जिक्र नफी जिक्र इस बात। क्या मतलब? नफी तो ये की गैरुल्लाह की, और इस बात अल्लाह ताला की। इस बात गैरुल्लाह को निकाला और अल्लाह को पाना, ये हो गया जिक्र मनफी, जिक्र मुस्बत और जिक्र माइनस एंड जिक्र प्लस। माइनस प्लस से समझते हैं ना। अब बात उर्दू ऐसी है कि क्या करें, वो हजरत के अल्फाज ऐसे होते हैं कि उसकी उसकी लज्जत भी कुछ और होती है, इसलिए दिल नहीं चाहता उसका तर्जुमा ऐसे करें। दिल यही चाहता है कि पूरे अल्फाज को नकल करें, पूरा नजर ही ऐसा है, उसको कैसे तर्जुमा करेंगे। सुभान अल्लाह। जैसे है लफ्ज है, एक है ये कहना आई एम सॉरी सॉरी, और एक है मुझे माफ कर दीजिए, इससे दिल पर चोट लगती है। सॉरी में तो कुछ है ही नहीं, जैसे सॉरी तो ऐसे जैसे नाक पर से मक्खी उड़ा दी, उस पर से दिल पर कुछ असर नहीं होता। एक है, एक होता है थैंक्स और एक है जज़ाकअल्लाह, उसका मजा ही कुछ और है, दिल पे लगता है। एक है सॉरी और एक है माफ कर दीजिए, बड़ा फर्क होता है, वो दिल पर लगता है, असल मजा ही है। इसलिए हजरत वाला ने फरमाया कि जब कोई गलती हो तो एक तो ये कि एक उसमें एक है इकरार गलती कि मैंने गलत काम किया, नंबर दो कि उस पर माफी मांगे। सिर्फ गलती के इकरार काफी नहीं है, माफी भी मांगनी है। पहला स्टेज तो ये कि माने तो सही है गलत है, और दूसरा स्टेज फिर माफी भी मांगे, तब कमाल पैदा होगा। इकरार गलती काफी नहीं है, इकरार गलती के साथ साथ उस पर माफी भी मांगे, फिर उससे कमाल पैदा हो जाएगा। दादा एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह की, मैं इस तरह कहोगे जब ला इलाहा कहो तो गोया तमाम गैरुल्लाह को दिल से निकाल दिया, और इल्लल्लाह से अल्लाह का नूर, अल्लाह ताला का नूर मेरे दिल में दाखिल हो गया। इस तरीके से पढ़े अल्लाह, चलें शुरू करें। हजरत वाला ने हमें ये भी सिखाया कि जब जिक्र करो तो इतनी हल्की आवाज रखो कि तुम्हारा कान सुन ले, ताकि फरमाया जबान के साथ साथ कान भी जाकिर हो जाए, सुन रहे ना, तो उससे फिर एक तवज्जो भी मिलेगी। बास कहते हैं कि जिक्र में तवज्जो नहीं होती, फरमाया कि इतनी आवाज रखो कि जबान से कि कान भी सुन ले, इतनी है, ताकि उससे कान भी वो मशगूल रहे और उसके कान में भी वो अल्लाह के नाम की आवाज पड़ती रहे। لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا هو جايك ميدانه दिल मेरा हो जाए एक मैदान हूँ, तू ही तू हो मेरे तन में बजाए आबो गिल, और मेरे तन में बजाए आबो गिल, दर्द दिल हो दिल हो दर्द दिल हो दर्द दिल, गैर से बिल्कुल ही उठ जाए नजर, गैर से बिल्कुल ही उठ जाए नजर, तू ही तू आए नजर देखो जिधर, तू ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. नफ्सो शैतान दोनों ने मिलकर हाय किया है मुझको तबाह, नफ्सो शैतान दोनों ने मिलकर हाय किया है मुझको तबाह, ऐ मेरे मौला मेरी मदद कर, चाहता हूँ मैं तेरी पनाह, ऐ मेरे मौला मेरी मदद कर, चाहता हूँ मैं तेरी पनाह, मुझसा खल्क में कोई नहीं गो बद किरदारो नामो सिया, मुझसा खल्क में कोई नहीं गो बद किरदारो नामो सिया, तू भी मगर है यार अब बख्श दे मेरे सारे गुना, तू भी मगर गफ्फार है यार अब बख्श दे मेरे सारे गुना, La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تسبیح اللہ کا نام اور اس کو ذکر اس میں ذات بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا وذکر اسم ربک, اپنے رب کا نام لیتے رہو. ہمارے رب کا نام اللہ ہے, لہذا اس لیے ذکر اسم ذات اس کو فرمایا. بلکہ یہ بھی فرمایا کہ قد افلاح من تزکا, کہ فلاح پا گیا یعنی کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنا تزکیہ کرایا. اور وذکر اسم ربہ, اور اپنے رب کا نام لیتے رہے, تو پتہ چلا تزکیہ کے لیے بہت مفید ہے. یہ آیت بتا دی ہے کہ اللہ کا نام یہ تزکیہ کے لیے مفید ہے. اس لیے جو مشائخ حضرات جو اپنے مریدین متعلقین کو اور منتصبین کو جو تلقین کرتے ہیں اللہ کا نام لینے کی, یہ مفید ہے اس کے لیے, تزکیے کے لیے. کیونکہ بات یہ میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو جب سورج نکلتا ہے تو تارے نظر نہیں آتے ہیں, فرمایا جب خالق کا جلوے دل میں آئیں گے پھر مخلوق نظر نہیں آئے, مخلوق سے محروم نہیں ہوگا. جب مہر نمایاں ہوا تو چھپ گئے سارے تارے, وہ بھری بزم میں مجھ کو تنہا نظر آئے. تو بس ایسے خالق کا جلوہ جب ملے گا, پہلے اللہ پر جل جلالہ کہنا واجب ہے. اور فرمایا اللہ کا نام اس طرح سے لو کہ ایک زبان میرے دل میں ہے اور ایک زبان میرے دل میں ہے, اور دونوں سے اللہ کا نام نکل رہا ہے. اللہ جل جلالہ تعالی شانہ, اللہ 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 کیسا پیارا نام ہے, اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے. نعرہ مستانہ خوشبو آئے دم, نعرہ مستانہ خوشبو آئے دم, تا ابد جانا چنی می بائے دم, تا ابد جانا چنی می بائے دم. اللہ 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 کیسا پیارا نام ہے, اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے. جز بذکر خیش مشغولم مکن, جز بذکر خیش مشغولم مکن, از کرم از عشق معزولم مکن, از کرم از عشق معزولم مکن. اللہ 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 اللہ
دعا کرنے کے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اللہ ہم سب کو اپنی محبت اور اپنا قرب اور تعلق خاص عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہماری جانوں کو اپنی محبت کا مزہ عطا فرما دیجیے. یا اللہ آپ بڑے ہیں, آپ کا نام بڑا ہے, جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی بڑی بڑی مہربانی ہماری جانوں پر فرما دیجیے. یا اللہ اپنے نام پاک کے صدقے میں ہم سب کو جذب فرما کر اپنا قرب اور ایسا ایمان اور ایسا یقین عطا فرما کہ ہر لمحہ سانس آپ کو خوش رکھیں اور ایک لمحہ ایک سانس آپ کی نافرمانی میں نہ گزارے. یا اللہ اپنے کرم سے ولایت صدیقیت کا انتہائی مقام ہماری جانوں کو نصیب فرما دیجیے. یا اللہ اعمال ولایت عطا فرما, افعال ولایت عطا فرما, کردار اور رفتار اور گفتار ولایت ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. اخلاق ولایت اللہ علی منہاج الولایت ولایت صدیقیت ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. اور اے کریم مالک اپنے کرم سے یا اللہ ہماری گناہ پسندی کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجیے. ہماری گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما. یا اللہ ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجیے. شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق دین زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق خدمت دین کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما دیجیے. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما, اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا. یا اللہ ہم سب کو حلال روزگار عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم سے یا اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنا دیجیے. یا اللہ جو باتیں پیش کی کہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے قرب کے دریا کی مچھلیاں ہم سب کو بنا دیجیے. یا اللہ ہمارے جسم کے ذرے ذرے کو اپنی یاد میں لگا دیجیے. یا اللہ اپنے کرم سے مغفرت بے حساب بھی عطا فرما دیجیے. ہمارے شیخ دامت برکاتہم, یا اللہ اپنے اپنے کرم سے جن کی صحبت عطا فرما دی. یا اللہ ان کے صحبت کے صدقے میں ہم سب کو ولایت صدیقیت کا انتہائی مقام عطا فرما, حضرت والا کی زندگی میں برکت عطا فرما, صحت عافیت خدمات دینیہ شرف قبولیت کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم سے یا اللہ ہم کو بھی ہمارے گھر والوں کو بھی عافیت نصیب فرما. ان دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما دیجیے. یا اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت